शांति। शांति वन के मनमोहिनी परिसर में आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप सबको तो पता ही है, पिछले 86 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है और शुरू से ही हमारी सेवा के मुख्य दो साधन रहे हैं, एक ईश्वरीय ज्ञान और दूसरा है राजयोग। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत वो सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान दिया जाता है जिन सत्यों पर हमारा जीवन चलता है और संसार का खेल चलता है। यहाँ राजयोग शिविर के या आपके कार्यक्रम के हर सत्र में प्रथम ईश्वरीय ज्ञान दिया जाएगा ताकि हमें स्पष्ट हो, हमारी समझ क्लियर हो जो भी टॉपिक रखे गए हैं। फिर योग अभ्यास भी कराया जाता है। प्रतिदिन के प्रातःकालीन सत्र योग से संबंधित है। आज के प्रथम सत्र में हम स्वयं का सही परिचय प्राप्त करेंगे। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और आखिर हमें कहाँ जाना है। हर धर्म में इस बात को महत्व दिया है कि नो थाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन करो। ये भी कहा जाता है खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। तो ये खुद को जानने की बात क्या है? हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं, हम कहते हैं आपका परिचय क्या है, आप कौन है, आप कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय एक दो को बताते हैं। मैं मिस्टर फलाना हूं, फलाने की बेटी हूं, मैं एडवोकेट हूँ, डॉक्टर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। हम अपना दुनियावी सांसारिक परिचय देते हैं। स्पष्ट है आप कौन हैं, इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक परिचय देते हैं, मीन्स हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस में भी, सूक्ष्म स्मृति में भी यही रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। हम शरीर भान में रहते हैं, देह अभिमान में जीवन जीते हैं। सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक जो भी कर्म व्यवहार हम करते हैं, उन कर्मों में अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को चेक करें तो कुछ एक कर्म में शरीर के नाम, रूप, रंग, आयु की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, युवा हूं, बूढ़ा हूं, सुंदर हूं, साधारण हूं। शरीर के नाम, रूप, रंग, आयु की कॉन्शियसनेस। कुछ एक कर्म व्यवहार संबंध के अभिमान में आकर हम करते हैं, पता है मैं किसका बेटा हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनके सास हूं। संबंध के अभिमान में व्यवहार कर, हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं ऑफिसर हूं, मिनिस्टर हूं, मैं उद्योगपति हूं, डॉक्टर हूं, व्यापारी हूं, शिक्षक हूं। हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस, इसलिए आप देखिए ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ह्यूमन डूइंग हम बन गए हैं। कौन क्या करता है, किस पोस्ट पोजीशन पर है, उसके आधार पर हमारा उनसे व्यवहार चल। इस प्रकार धर्म की कॉन्शियसनेस, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, धर्म की कॉन्शियसनेस रहती है। इवन जाति की कॉन्शियसनेस रहती है, मैं बनिया हूं, ब्राह्मीण हूं, राजपूत हूं, जाति ज्ञाति की कॉन्शियसनेस रहती है। इवन भाषा की कॉन्शियसनेस, ये गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, सिंधी है, भाषा की कॉन्शियसनेस। इवन नेशनलिटी की कॉन्शियसनेस, मैं अमेरिकन हूं, मैं जैपनीज हूं, मैं चाइनीज हूं। टोटल हम कह सकते हैं हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, हमारा जीवन भौतिकवादी भोगवादी बन गया। जीवन के ऐसे स्वरूप में हमें एक क्षण शांति से सोचने की आवश्यकता है कि क्या मैं शरीर हूं। हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, देहभान में रहते हैं, देहभिमान में आकर जीवन जीते हैं, पर क्या मैं शरीर हूं? सोचिए, जबकि शरीर के बारे में हम जानते हैं कि वास्तव में शरीर क्या है, शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि शरीर तो प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ पुतला है। प्रकृति के पंच महाभूत है, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि। ये दुनिया भी पांच तत्व से बनी है, इसलिए हम इस दुनिया को फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, भौतिक जगत कहते हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति के पांच तत्वों से बना है, इसलिए डेड बॉडी को जब अग्नि संस्कार देते हैं, हम कहते हैं पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पुनः पांच तत्व में मिल गया। सरल शब्दों में हम कहते हैं कि मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। तो शरीर तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटीरियल है। संसार में जितनी भी चीजें वस्तुएं साधन वैभव पदार्थ, इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं, ये प्रकृति के पांच तत्वों से बना है। जैसे ये चीजें जड़ हैं, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील हैं और आखिरकार नाशवंत है। हर चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती जाती है और आखिर टूट फूट जाती है। ऐसे शरीर भी प्रकृति के पांच तत्वों से बना है, इसलिए शरीर भी जड़ है, परिवर्तनशील है। बचपन से लेकर अब तक हमारे अपने देखते देखते हमारा अपना शरीर कितना बदल गया है, बदल गया कि नहीं? रोज आईने में देखते हैं ना। तो शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है। लेकिन मनुष्यात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द जब हम बोलते हैं, तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, एक पांच तत्वों का बना मानव शरीर और दूसरी चैतन्य शक्ति, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आत्मा। आत्मा कहा जाता है। हम सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, सरल शब्दों में हम उसे आत्मा कहते हैं। शरीर के बारे में हम जानते हैं कि शरीर तत्वों से बना है, जड़ है, परिवर्तनशील है, नाश्वंत है। लेकिन दूसरी है चैतन्य शक्ति। जब तक वो चैतन्य शक्ति शरीर में है, हम सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे ही वो चैतन्य शक्ति शरीर से निकल जाती है, शरीर डेड हो जाता है, डेड बॉडी कहते हैं। हम कहते हैं ना, फलाना मर गया। मरा कौन और गया कौन? मरा कौन? शरीर मर गया, डेड बॉडी। गई कौन? चैतन्य शक्ति। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हम कहते हैं प्राण चले गए, लाइट हैज गॉन, दीवा बुझ गया। क्या चला गया, कैसा चला गया, दिखाई नहीं देता है, अनुभव होता है चैतन्यता चली गई, कोई शक्ति निकल गई। तो दो अस्तित्व है मनुष्यात्मा कहने से, मानव शरीर प्लस आत्मा मिलाकर मनुष्यात्मा कहा जाता है। प्रश्न आप सबसे ये है कि हम कौन है? क्या मैं पांच तत्वों का बना जड़ शरीर हूं या चैतन्य शक्ति आत्मा? मैं कौन हूं? क्या उत्तर आता है? मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं जड़ नहीं हूं। मैं सोचती हूं, विचार करती हूं। सोचना चैतन्यता की निशानी। जड़ चीजें सोच नहीं सकती। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हमें इच्छाएं होती हैं, हमें स्मृति रहती है। कोई स्वादिष्ट चीज आप खाते हैं, फिर खाने की इच्छा होती है। ये इच्छा चैतन्य को होती है। कोई सुंदर स्थान पर जाते हैं, उस स्थान को देखकर वापस आ जाने के बाद भी हमें उस स्थान की सुंदरता याद आती है। वो स्मृति किसको आती है? चैतन्य को आती है। हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं हो सकती। है ना, ये टेबल खिसकाना हो तो मुझे बल लगाना पड़े, अपने आप ये नहीं खिसक सकता है। आज जो भी रोबोट यंत्र मानव बनाए गए हैं उसमें भी जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वही वो कर सकता है, इसलिए उसके पीछे भी मानव ही है ना। हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है। कोई अच्छा कार्य आप करते हैं, आपको खुशी होती है, संतुष्टि होती है। आपने अच्छा कार्य किया, कोई ने भी एप्रिशिएट नहीं किया, फिर भी आपको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि मैंने अच्छा कार्य किया है। कोई गलत कार्य आप करते हैं, किसी को पता नहीं है, फिर भी कॉन्शियस बाइट करता है, दिल खाता है, चिंता होती है, भय लगता है, अनुभव होता है ना। हमें दूसरों के लिए भी सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है। अगर किसी के दुख को, दर्द को, कष्ट को जानकर भी आपको जरा भी दया, रहम, हमदर्दी नहीं होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर है, जरा भी इसमें दया नहीं। दया, रहम, प्यार, हमदर्दी, ये चैतन्यता की निशानी है। तो सिद्ध है कि मैं चैतन्य शक्ति हूं। भल देखने में चीजें आती है, वस्तुएं आती है, देखने में शरीर आ रहा है। आप कहेंगे कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, पंखा घूम रहा है, लैपटॉप चल रहा है, देखने में चीज आती है ना, परंतु सत्य क्या है? सत्य क्या है? इलेक्ट्रिक पावर बल्ब के द्वारा प्रकाश के रूप में अनुभव होता है, ट्यूब के द्वारा लाइट के रूप में अनुभव होता है। हम कहते हैं पंखा घूम रहा है, परंतु इलेक्ट्रिक पावर पंखे को घुमा रहा है, इलेक्ट्रिक पावर लैपटॉप को चला रहा है। इसी प्रकार भल देखने में शरीर आ रहा है, लेकिन सत्य क्या है? आत्मा शरीर को चला रही है। आंख द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली कौन है? चैतन्य शक्ति आत्मा है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य यही हमें समझना है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। कितनी बड़ी अज्ञानता है कि अब तक हम अपने आप को शरीर ही समझते रहे हैं, शरीर भान में ही जीवन जीते रहे हैं। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन रखने वाले हम अपने आप को ही नहीं जानते कि हम चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर तो केवल एक साधन है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। हम कहते हैं ना भी मेरे पांव थक गए हैं, अब मैं ज्यादा नहीं चल सकती हूं। मेरे पांव मींस मैं पांव नहीं हूं, मेरे हाथ कमजोर है, मैं इतना वजन उठाकर नहीं चल सकती हूं। मेरे हाथ मींस मैं हाथ नहीं हूं, मेरे सिर में बहुत दर्द है मींस मैं सिर नहीं हूं, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है मींस मैं पेट नहीं हूं, मैं हाथ नहीं, पांव नहीं, सिर नहीं, पेट नहीं, मींस मैं शरीर नहीं हूं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं, मैं और मेरा ग्रामेटिकली भी अलग अलग है। प्रतिदिन कितनी बार हम ये शब्द बोलते हैं मैं और मेरा, परंतु देखो हमें खुद को ये स्पष्ट ही नहीं है कि मैं अलग हूं, मेरा अलग है। इसलिए इस विश्वविद्यालय में पहला पाठ यही पक्का कराया जाता है कि आपका सही परिचय ये है, आप आत्मा है, चैतन्य शक्ति है, जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में हम मस्तक में तिलक करते हैं, हर शुभ कार्य में, मांगलिक प्रसंगों में भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। ये आत्म स्मृति की निशानी है कि आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। हम तिलक करते हैं परंतु खुद को आत्मा नहीं समझते हैं। यहां तिलक करने की कोई रस्म नहीं है, यहां खुद को आत्मा समझने का अभ्यास कराया जाता है। और कंपैरिजन से हम स्पष्ट समझे, चित्र के बीच में शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं, रॉन्ग कॉन्शियसनेस, मैं पुरुष हूं, ये गलत भान है। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। शरीर एक मोटर कार के समान है, आत्मा को कहेंगे ड्राइवर के समान। एक ड्राइवर दिन रात गाड़ी चलाता है, पर वो अपने आप को मोटर नहीं समझता है। उनको क्लियर है कि मोटर कार अलग है, मैं ड्राइवर अलग हूँ। हमें भी ये स्पष्ट रहे, बल हर क्षण शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं, पर हम शरीर नहीं हैं। हम इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूँ। मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूँ। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर एक वस्त्र के समान है, मैं आत्मा इसको धारण करने वाली इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हूँ। शरीर एक ड्रेस है, मैं इस वर्ल्ड ड्रामा की अविनाशी एक्टर आत्मा हूँ। शरीर एक रथ के समान है, मैं इस शरीर को चलाने वाली रथवान हूँ, रथी हूँ। इसलिए हम हैं आत्मा, लेकिन जीवन भर खुद को देह समझ रहे हैं, इसलिए हम बॉडी कॉन्शियस बन गए। अब अगर अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, राइटियस बनाना है, तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते देखते मन ही मन ये स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। तो राजयोग का पहला अभ्यास है आत्म चिंतन करना, आत्म स्मृति में रहना। प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है, इसलिए हमें एक दो को आत्मा दृष्टि से देखना है कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे, आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई है। आज हम देह दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कितने डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, कितने भेदभाव हर परिवार में उत्पन्न हुए हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बेटा है, ये बेटी है। कितना भेदभाव रखा जाता है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये तो बूढ़े हैं, हम युवा हैं। कितनी डिफरेंसेस आज समाज में क्रिएट हुई है। इसी के आधार पर धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, आज सारा विश्व विभाजित हो गया है इस एक बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। अगर हमें फिर से विश्व परिवार की भावना लानी है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्थापित करनी है, तो हमें भाईचारा अगर हमें लाना है तो ये सोल कॉन्शियस लेवल पर ही हो सकता है। आत्मभान आत्मदृष्टि से ही भाईचारा आ सकता है। इसलिए आत्मस्मृति में रहना है, आत्मदृष्टि से देखना है, ये आत्मभिमानी बनने के अभ्यास है। अब आत्मा माना क्या? जैसे शरीर माना पांच कर्मेंद्रियां, हाथ आंख नाक कान मुख, ये पंच कर्मेंद्रियां हैं। इन पांचों कर्मेंद्रियों के सेटअप को शरीर कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? हाथ है। हाथ को शरीर नहीं कहते हैं, परंतु हाथ शरीर का अंग नहीं है, ऐसा भी तो नहीं कहेंगे ना? तो हाथ पांव आंख नाक कान मुख मिलाकर शरीर कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा माना मन बुद्धि और संस्कार। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। आत्मा की ये तीन शक्तियां हैं। मन बुद्धि संस्कार के चैतन्य समूह को आत्मा कहा जाता है। मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। मन और बुद्धि कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। आत्मा की चैतन्यता को ही मन और बुद्धि कहा जाता है। मन शब्द तो आप सभी जानते हैं ना? अक्सर कहते रहते हैं मन भटकता है। परमात्मा को याद करने बैठते हैं, मन भटकता है, एकाग्र नहीं होता है। बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी क्या कंप्लेन करते हैं? मन एकाग्र नहीं हो रहा है, मन भटक रहा है। अक्सर कहते हैं मन की शांति चाहिए, कहते हैं ना? तो मन किसको कहते हैं? मन किसको कहते हैं? जब आप कहते हैं मन भटकता है, तो क्या कोई चीज निकल कर भटकती है? नहीं। मन भटकता है मीन्स इसका अर्थ क्या है? विचार आते हैं, बैठे हैं परमात्मा चिंतन करने पर अन्य अनेक बातें याद आती हैं, विचार आते हैं, तो हम कहते हैं मन भटकता है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। आत्मा की संकल्प शक्ति मनन शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य है सोचना विचार करना, कल्पना करना, आइडियाज क्रिएट करना ये मन का कार्य है। इसलिए आत्मा की संकल्प शक्ति, मनन शक्ति, विचार शक्ति को मन कहा जाता है। अब तक हम बॉडी कॉन्शियस रहे, इसलिए मटीरियलिस्टिक बन गए। हमने मन का अधिक उपयोग किस चिंतन में किया है? हर एक अपने आप को देखिए, आपने मन का उपयोग बहुत करके किस चिंतन में किया है? अक्सर कौन सी बातें सोचते रहते, कौन से विचार आते? हम कह सकते हैं कि हम सभी ने अब तक मन का अधिक उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही मन का अधिक उपयोग किया है ना? इसलिए वही विचार हमें आते रहते हैं, शरीर के, संसार के, परिवार के, नौकरी धंधे के, खाने पीने के, पहनने के, घूमने के, वही विचार हम करते रहते हैं। क्योंकि हमने मन का उपयोग इसी चिंतन में किया। आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, तेरी मेरी यहां की वहां की इसकी उसकी बातें करने में टाइम लिमिट भी नहीं रहता है। कहेंगे अरे 2 घंटे बीत गए पता भी नहीं चला, ऐसे कहते हैं। अरे रात के 11 बज गए बातें करते करते पता भी नहीं चला, है ना? तो देखो, पर चिंतन, शरीर चिंतन, संसार चिंतन, व्यर्थ चिंतन करने में कोई टाइम लिमिट नहीं रहती, उसमें किसी को नींद भी नहीं आती। और यहां हम 5-10 मिनट आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन का अभ्यास कराते हैं, उसमें भी लोग सो जाते हैं। अभी भी देखो आसपास कोई सो तो नहीं रहा है ना? ये क्या बताता है? ये क्या बताता है कि हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए नींद आ जाती है। हमें दूसरों में इंटरेस्ट है, इसलिए पर चिंतन करने में तो आंखें बड़ी करके हैं, क्या कहा, कान भी सीधे करके सुनते, हमें उसमें इंटरेस्ट है। अब हमें परिवर्तन करना है। बेशक जो आवश्यक है शरीर के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, नौकरी धंधे के बारे में, जो जरूरी है वो हमें जरूर सोचना है, परंतु क्या हम सिर्फ आवश्यक ही सोचते हैं? कि अनावश्यक, बिगर मतलब की, बिन जरूरी, तेरी मेरी कितनी बातें सोचते, इसको क्या कहेंगे? व्यर्थ चिंतन, वेस्ट थॉट्स। इसलिए व्यर्थ को खत्म करें, आवश्यक जरूर सोचें। हम नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं, अच्छे शुभ विचार बहुत कम आते हैं। गुस्से के वश, ईर्ष्या के वश, द्वेष, दुश्मनावट, अहंकार के वश कितना मन में तेजी से विचार चलते हैं। वो है नेगेटिव थॉट्स। इसलिए आजकल कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग सिखाओ। शुभ चिंतन चलता नहीं है, इसलिए साइलेंस में बैठते हैं, शुभ चिंतन करना है, श्रेष्ठ चिंतन करना है, पर वो चलता नहीं है इसलिए निंदा जाती है। तो अब नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज करना है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं और मन का कार्य है सोचना। मन को विचार शून्य नहीं कर सकते। मैं आप सबको कहूं एक मिनट साइलेंस में बैठिए, एक भी विचार नहीं करना है। हो सकता है? हाँ, हो सकता है? नहीं, कई विचार मन में आएंगे। ये क्लास पूरा होगा, हम चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, फलानी जगह जाएंगे, ये देखेंगे, कई थॉट्स आ सकते हैं ना। मन को विचार शून्य नहीं कर सकते हैं। हम चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं, चिंतन के सब्जेक्ट को बदल सकते हैं। कि आप व्यर्थ सोचते रहते हैं, अब आप निर्णय करें कि अब हम आवश्यक बातें ही सोचेंगे। नेगेटिव सोचते रहे हैं, अब आप लक्ष्य रखें हमें पॉजिटिव, शुभ और श्रेष्ठ बातें सोचने। विचार अनेक आते हैं, पर सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते हैं। आप निर्णय करते हैं कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मन घोड़े समान चंचल है तो बुद्धि उसकी लगाम है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, मन के अनेक विचारों को अंडरस्टैंड करती है, सिलेक्ट करती है, चूज करती है। जैसे आप सबको यहां आने वाले राजयोगी भाई बहनों ने निमंत्रण दिया कि चलो माउंट आबू चलना है, वहां जाएंगे और वहां सत्संग करेंगे। आप सबको मन में कई विचार आए होंगे, जाएं न जाएं, ये काम है वो काम है, क्या समझाएंगे पता नहीं, कई विचार आए होंगे। आपने निर्णय किया कि चलो जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं और आप आए, ये आपका कर्म हुआ। तो मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। आज बुद्धि भी कमजोर पतित भ्रष्ट बन गई है, इसलिए राइट निर्णय नहीं कर पाते हैं, करते हैं उस अनुसार जीवन जी नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि कमजोर बन गई है। हमने बुद्धि का योग, बुद्धि का अटेंशन वहां लगाया है, उन व्यक्तियों में, वस्तुओं में, वैभवों में, व्यसनों में, बातों में, घटनाओं में, हमने बुद्धि वहां आसक्त की है जहां से बुद्धि को कोई शक्ति नहीं मिलती, बुद्धि का कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। इसलिए बुद्धि पतित भ्रष्ट कमजोर बन गई है। अगर हम बुद्धि को शुद्ध शक्तिशाली और दिव्य बनाना चाहते हैं, हमें बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। हम गाते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। परमात्मा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्य परमात्मा के सत्य ज्ञान से सद्बुद्धि आती है। इसलिए अब हमें बुद्धि का अटेंशन, बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है। बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं, हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव कर्म करने वाली आत्मा पर पड़ता है। आप अच्छा कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, या रूटीन साधारण कर्म करते हैं, हर कर्म का प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता है और बार 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 वो ही कर्म करते रहने से कर्म का प्रभाव दृढ़ हो जाता है, जिसको स्वभाव संस्कार कहते हैं। हम एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार गुस्सा करते रहते हैं, हमारा स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। व्यक्ति दो बार, चार बार, बीस बार झूठ बोलता है, उनकी आदत झूठ बोलने की हो जाती है। फिर अनावश्यक छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते रहते, क्योंकि आदत बन गई ना। इसलिए कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति पक्का चोर बन जाता। कर्म ही संस्कार बनते हैं, विचार कर्म का बीज है। पहले मन में बात आती है ना, मुझे ऐसा करना है, विचार कर्म का बीज है। कर्म ही संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार होंगे ऐसे ही विचार बार बार आते रहेंगे। ये है इनर मैकेनिज्म, विचार कर्म संस्कार, विचार का ये साइकिल है, इसी के आधार पर हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स फॉर्मेट होते हैं। इसको आदत कहो, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, टेंडेंसी कहो, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहो, सबकॉन्शियस कहो, वो एक ही बात है। इसलिए अगर संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, हमें अपनी बिहेवियर को, व्यवहार को, कर्म को सुधारना चाहिए। अगर कर्म को सुधारना है तो हमें अपने चिंतन को बदलना चाहिए। यही कारण है यहां हम राजयोग सिखाते हैं, जो मन बुद्धि संस्कार को चेंज करता है, प्यूरिफाई करता है, एम्पावर करता है। फिजिकल योग तो सब जानते हैं, जो फिजिकल हेल्थ के लिए है, पर यहां हम राजयोग सिखाते हैं, क्योंकि आज शरीर से भी ज्यादा मन को प्यूरिफाई एम्पावर करने की ज्यादा जरूरत है। मन में शक्ति नहीं है, इसलिए टेंस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो राजयोग का पहला अभ्यास है चिंतन को सही करना, श्रेष्ठ करना, शुद्ध करना। सब जानते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ भी साथ नहीं ले जाती। क्या साथ ले जाती है? जीवन भर किए हुए कर्मों के फल स्वरूप बने हुए स्वभाव संस्कार साथ लेकर जाते हैं। उसी के आधार पर ऐसे ही परिवार में जन्म होते हैं। क्यों किसी का जन्म चरित्रवान परिवार में, किसी का जन्म भ्रष्टाचारी परिवार, कोई गरीब, कोई सुखी, कोई सुसंस्कारी, कोई गलत आदतों वाले, व्यसनों वाले परिवार में? अभी तो इस जीवन के कर्म शुरू भी नहीं हुए तो अलग अलग परिवार में जन्म लेने का कारण पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों से बने संस्कार है। इसलिए हमें, और आज आप देखिए, हर एक अपने आप को देखे, हमारे स्वभाव संस्कार कैसे बन गए, हमारी आदतें कैसी बन गई। कोई क्रोध के वश है, कोई लोभ के वश है, देखते हो ना, लोभ लालच के वश, कितना भ्रष्टाचार, मिलावट, बनावट, संग्रहखोरी, काला बाजार, काला धन, ये लोभ लालच के संस्कारों के कारण है। कोई काम वासना के वश, कितनी गंदी दृष्टि वृत्ति वाले बहनों के साथ गलत व्यवहार करने वाले हैं। आज हर आए दिन बलात्कार के किस्से सुन रहे, कितनी गंदी मानसिकता बन गई है। अपहरण, बलात्कार, जनसंख्या वृद्धि, ये क्या है? काम वासना के वश संस्कार और कर्म है। क्रोध के वश लड़ाई झगड़ा मारामारी खून युद्ध, रूट कॉज क्या है? गुस्सा अहंकार, यही है ना। आपस में तो झूठा अभिमान है, इसलिए आपस में तो स्वीकार नहीं करते। कोई अगर कह दे आप तो बड़े अभिमानी हैं, गुस्सेल हैं, लोभी हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। वो हमें हमारी दो कमजोरियां बताएंगे, हम उनको चार बताते हैं कि रहने दो, तुम कैसे हो हमें पता है, तुम भी तो ऐसे हो ऐसे हो। आपस में झूठा अभिमान होने के कारण हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब परमात्मा को याद करते हैं, आरती भजन में स्वीकार करते हैं ना, आरती में गाते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना है। भगवान को याद करते हैं तो स्वीकार करते हैं कि मैं पापी नीच कपटी हूं, मोह सम कुटिल न कोई। पर आपस में झूठा अभिमान है, इसलिए रियलाइज नहीं करते। आज हम सभी आत्माएं कम या ज्यादा परसेंटेज में, हम सभी पतित भ्रष्ट तमो प्रधान दुखी अशांत बन गए हैं। लेकिन एक और सत्य मैं आपको बताऊं, हमें समझना है कि भल आज हम पतित दुखी अशांत बन गए हैं, लेकिन हमारी ओरिजिनल नेचर ये है। प्रत्येक आत्मा को जीवन में क्या चाहिए? यही चाहिए ना। हरेक को जीवन में शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता चाहिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। इसलिए देखो, हमें स्वच्छता अच्छी लगती है कि गंदगी अच्छी लगती है? भल आदत के वश गंदगी करते रहते हैं, कचरा जाता फेंकते रहते हैं, पर हमें पसंद क्या है? स्वच्छता पसंद। हमें पवित्रता अच्छी लगती है, न कि वासना। किसी की गंदी दृष्टि वृत्ति हमें पसंद नहीं आती है ना। पवित्र आत्माओं को कितना मान देते हैं, पवित्र संतों का पूजन क्यों करते हैं, पवित्र देवी देवताओं का दर्शन क्यों करते हैं, पवित्र कन्याओं का नवरात्रि में क्यों सम्मान करते हैं? हमें पवित्रता अच्छी लगती है, न कि गंदी दृष्टि वृत्ति। हमें सच्चरित्रवान अच्छे लगते हैं, बदचलन वाले नहीं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। हमें शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? क्या चाहिए? शांति, जीवन में शांति चाहिए। थोड़ा भी मन मुटाव, अनबन हमें अच्छी नहीं लगती है ना, मन भारी हो जाता है। हमें शांति, मेल मिलाप अच्छा लगता है। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है या घृणा करे वो अच्छा लगता है? प्यार करे वो अच्छा लगता है। हर आत्मा को प्यार चाहिए, शरीर से बूढ़े हैं, बच्चे हैं या युवा है, हर आत्मा को प्यार, रिस्पेक्ट चाहिए। हमें सब खुश रहे वो अच्छा लगता है या कोई उदास रहे, मूड ऑफ रहे वो अच्छा लगता है? कोई थोड़ा भी मूड ऑफ है, उदास है, तो हम उनको खुशी में लाने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हमें खुशी अच्छी लगती। तो ये हैं हर आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण, 7 क्वालिटी। इसलिए अब ये स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। यहां जो ओम शांति शब्द आप सुनते हैं, इसका अर्थ क्या है? ओम शांति, यहां कोई बोलने का मंत्र नहीं है, ये कोई रीत रस्म नहीं है। ओम शांति का अर्थ है ओम मीन्स मैं आत्मा, शांत आत्मा। अगर आप यही सोचेंगे, बोलेंगे कि मैं कहता हूं ना, मुझे तो गुस्सा आ जाता है भाई, मेरा स्वभाव गुस्सेल है, अगर यही सोचेंगे बोलेंगे तो आप गुस्सा ही करते रहेंगे। अब आप ये स्मृति रखें कि मैं शांत आत्मा, शांति मेरा स्वधर्म है। अगर ये स्मृति रहेगी, आप अनुभव करके देखिए, कोई कितना भी गुस्सा करेगा आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको अवेयरनेस है, जागृति है, स्मृति है कि मैं शांत आत्मा। तो शांति जंगलों में नहीं है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। सुख साधनों में नहीं है, साधनों से सुविधाएं होती है, पर इन सुविधाओं का सुख भी तब अनुभव होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप। अगर मुझे सुख चैन नहीं है तो मुझे अपार वैभव महल में भी सुख अनुभव नहीं होता है। हमें सुख स्वरूप स्थिति बनानी, हमने साधन बना दिए, वैभव बना दिए, पर स्थिति नहीं बनाए। इसलिए कहते हैं ना कि घर में सब कुछ है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, सोने चांदी के गहनों के सेट है, सब कुछ बच्चे सेट है, पर खुद कितनी बातों में अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि मन की स्थिति, आत्मा की स्थिति हमने नहीं बनाई। तो ये जो अभ्यास है अपनी आत्म स्थिति, मन बुद्धि संस्कारों की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने, तो शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति मुझ आत्मा में समाया हुआ है। शरीर 5 तत्वों से बना है, मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप हूं। इसलिए जैसे ही आप स्व में आत्मभान में स्थित होंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, मन अंतर्मुखी बनेगा, आप स्व के प्रति केंद्रित हो सकेंगे, आपको खुद में ही सुख आनंद अनुभव होगा। और लास्ट बात कि हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं, इसलिए हमारे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये हमारा घर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। वैसे तो भूल जाते हैं इस सत्य को, पर जब कोई शरीर छोड़ते हैं तब याद आता है कि देखो चले गए, क्या ले गए, अकेले आए अकेले जाना है। पर कहां से आए हैं, कहां जाना है, ये तो पता है ही नहीं। मैं आप सबसे पूछूं कि आप कहां से आए हैं, और आप कहो कि आए तो हैं पर पता नहीं कहां से आए, तो कैसा लगेगा। हम इस दुनिया में आए हैं, शरीर धारण कर कर्म कर रहे हैं, कर्म फल भोग रहे हैं, पर कहां से आए, कहां जाना पता ही नहीं। तो ये दुनिया, ये सृष्टि रंगमंच है, ये वर्ल्ड ड्रामा है, हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं। हम तो इस सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल प्ले करने आए, पर हमारा घर कौन सा है, क्यों जाने अनजाने हर इंसान को जीवन में कभी ये विचार आ जाता है कि इससे तो चले जाएं तो अच्छा है। आता है ना ऐसे विचार, ऊपर चले जाए, पर कहां जाना है। हमारा असली घर इस दुनिया से दूर 5 तत्वों से पार परम धाम है। चित्र में सबसे ऊपर लाल रंग में बताया है, वो है प्रकृति का 6वां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व। हम उस ब्रह्म लोक के निवासी, जिसको हम परलोक परम धाम शांति धाम मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहते, वो हम आत्माओं का असली घर है। वहां शरीर नहीं है इसलिए कर्म नहीं, हलचल नहीं, आवाज नहीं, वो शांति की दुनिया है। ये टॉकी वर्ल्ड है, आवाज की दुनिया, क्योंकि यहां फिजिकल ऑर्गन्स है, हम आवाज करते हैं, बात करते हैं। ये टॉकी वर्ल्ड है, वो साइलेंस वर्ल्ड, वो हमारा असली घर है। इसलिए हरेक को ऊपर जाने की इच्छा होती है, क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल स्टेज है। वहां अगर इस दुनिया में रहते हुए ये सत्य हम याद रखें कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम तो मन और बुद्धि के इच्छाओं और विचारों के बिस्तर इतने खोल कर बैठ गए हैं जैसे हमें यहां से कभी जाना ही ना हो, पर जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, ये सृष्टि का क्रम है, कुदरत का नियम है। जिसने शरीर धारण किया है उनको शरीर छोड़ना भी। इसलिए अगर इस दुनिया में रहते हम ये याद रखें कि ये हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, हमारा असली घर शांति धाम है, तो इस दुनिया में रहते भी हम अनासक्त कर्मयोगी बन सकते हैं। इस दुनिया में रहते भी न्यारे प्यारे कमल फूल समान बन सकते हैं। और इस शरीर में रहते हुए अगर हम ये स्मृति रखें कि मैं आत्मा हूं, देह से अलग हूं, तो देह भान से न्यारे रह सकते हैं, आत्माभिमानी बन सकते हैं। ये है राजयोग का पहला लेसन, खुद को आत्मा समझना, आत्मस्मृति में रहना, आत्म अभिमानी बनकर, सोल कॉन्शियस बनकर कर्म करना। तो हम सभी 5 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे, सभी अलर्ट होकर व्यवस्थित बैठ जाए। कमर सीधी करके बैठें तो आप थकेंगे नहीं और आपके थॉट्स की एनर्जी सभी अंगों में जाएगी। अपना डायरी, पर्स, फाइल, हैंडबैग साइड में रख दीजिए, हाथ में गोद में लेके न बैठे, गले में लटका के न बैठे, साइड में रख दीजिए। 1-2 से अलग अलग होकर बैठे, टच करके न बैठे, नहीं तो एक को नींद आएगी तो दूसरे को भी प्रभाव आएगा। एक का मन भटकेगा तो उनके वाइब्रेशन दूसरे को भी, इसलिए डिटैच होके बैठो अलग अलग। आंखें नेचुरल खुली रहने दी। भक्ति में आंख बंद कर सिर झुका करके बैठते हैं। आत्मचिंतन करना श्रेष्ठ कार्य है, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्नत मस्तक, आंखें नेचुरल खुली रखें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, आप मेरे मस्तक में, ब्रुकुटी में देखें, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। ये आपका नया अभ्यास है, मैं कमेंट्री द्वारा गाइड करूंगी, आपको विचार दूंगी, आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, आवाज नहीं कर, लेकिन मन ही मन रिवाइज करना है, दोहराना है, वही थॉट मन ही मन आप दोहराएं, अर्थ समझें, रियलाइज करें, महसूस आत्मा स्थिति में स्थित हो जाए। कुछ क्षणों के लिए आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से अलग हो जाइए, साक्षी बन जाइए। स्वयं के मस्तक बीच ब्रिकुटी में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूं। मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चला, मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर इस देह की दुनिया से दूर प्रकृति के पांच तत्वों से पार शांति धाम है। सूर्य चांद सितारों से भी परे अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व हैं। मैं आत्मा इस ब्रह्म लोक की निवासी हूं। अपने असली घर में, अपने असली ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में अपनी असली गुण स्थिति में मैं आत्मा स्थित हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मेरे असली धाम में सर्वत्र शांति है। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है। मैं आत्मा सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। शांत हूँ, शुद्ध हूँ, एक शक्ति हूँ। शांति। ओम शांति।
सभी कर्तक ध्वनि से दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। कहते ना, जिस्म और रूह का क्या अजब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे फिर भी तारुफ न हो पाया, लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं, इसलिए हम गीता दीदी को थैंक यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें स्वयं की पहचान दी, तो स्वयं से स्वयं को मिलवाया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी।